ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല ഗോപാല കീ ജയ. ജയ രാധാ മാധവ കുഞ്ജ വിഹാരി. ജയ രാധാ മാധവ കുഞ്ജ വിഹാരി. ഗോപീജനവല്ലഭ ഗിരിവരധാരി. ജയ ഗോപീജനവല്ലഭ ഗിരിവരധാരി. യശോദാനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന. യശോദാനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന. യശോദാനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന. യശോദാനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന. യമുനതീരാവനചാരി. യമുനതീരാവനചാരി. ജയ രാധാ മാധവ ബിഹാരി. ജയ രാധാ മാധവ കുഞ്ജ ബിഹാരി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ചൂണിത്യനന്ദ ശ്രീയദ്വൈതാവതാരധ ശ്രീവാശദി ഗൗർഭക്തവൃന്ദ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാശദി ഗൌര ഭക്തവൃന്ദ. ശ്രീവാശദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Anita Gaura Hari Mal Hari Mal Hari Mal Hari
অভয় চরণের বৃন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী ছিল বৌপাদ কি জয় ইস্কন বিউটি ভণ্ডার ছিল বৌপাদ কি জয় জয় বিশ্ববাদ পরমশ পরিব্রাজক আচার্য অষ্টোত্তর সরস্বী শ্রীমশীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বী ঠাকুর ছিল বৌপাদ কি জয় সচিদানন্দ শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কি জয় অনন্ত গৌরী বৈষ্ণবৃন্দ কি জয় নামা চলে শিল বিদাস ঠাকুর কি জয় প্রেমস কহো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রদ্ধিত গদাধর শিবাশাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয় গঙ্গা মায় কি জয় যমুনা মায় কি জয় ব্রজমন্ডল বৃন্দাবন ধাম কি জয় মায়াপুর নবদ্বীপ ধাম কি জয় পুরুষোত্তম কৃতি জগন্নাথপুরী ধাম কি জয় ভক্তি দেবী তুলসী মহারাণী কি জয় শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ ভগবান কি জয় জগন্নাথ ব্রজসুন্দর মহারাণী কি জয় শ্রী গণিতায় কি জয় জগদ্ধ মরি নাম সংকীর্তন কি জয় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কি জয় শিল সেন্ট্রাল বুক টিউশন প্রোগ্রাম কি জয় গ্রন্থরা শ্রীমদ ভাগবতম কি জয় গ্রন্থরা শ্রীমদ ভাগবতম কি জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বোল জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বোল জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বোল হরে কৃষ্ণ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय নারায়ণং নমস্কৃতং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে নষ্টপ্রায়েষু অবদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবায় ভগবতীর উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতীরৈষ্টিকি হরে কৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভাগবতম দশম স্কন্ধ একাদশ অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা নয় 10, 11, 9 अध्याय का शीर्षक है कृष्ण की बाल लीलाएं। इस अध्याय का शीर्षक है कृष्ण की बाल लीलाएं। तो भगवान कृष्ण किसके लिए बाल लीला का प्रकट की थी इसके ऊपर हमारे गौरिया आचार्य ने बहुत अच्छा अच्छा टीका भी प्रदर्शन की। भगवान इस बाल लीला को प्रदर्शित की थी इसके कारण से ब्रजवासी के संतुष्ट के लिए नहीं। भगवान का शिष्ट जीव सबको संतुष्ट विधान के लिए भगवान ये बाल लीला को प्रदर्शित की थी। अगर कोई भोपा जी बताते हैं कि अगर कोई नास्तिक व्यक्ति के सामने जाकर अगर इस तरीके से भगवान का बाल लीला को अगर कोई वर्णन करे तो नास्तिक व्यक्ति सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति आगे वाला व्यक्ति मेरे को कह रहे हैं ये निश्चित रूप से कोई मूर्ख व्यक्ति हो सकता है, लेकिन शास्त्र का हिसाब से साधु तथा संत का मुखारविंद से जब भगवान का कथा निकालते रहते हैं, क्योंकि भगवान और संत और संत और भगवान ये दोनों एक दोनों का परिपूरक कहते हैं, देर आर को रिलेटेड। गोपाल जी कहते हैं कि संत, एक संत जैसे भगवान बिना रह नहीं सकते हैं, उसी तरीका से भगवान भी भगवान का भक्त बिना रह नहीं सकते हैं। भक्त और भगवान ये दोनों में इतने गाढ़े संबंध रहते हैं, जिसके लिए भगवान ने जो बाल लीला का प्रदर्शित की, सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे कि इस बाल लीला का प्रदर्शन करने का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि इसे ब्रजवासी को संतुष्ट करने का, भगवान का शिष्ट जीव तथा भगवान का शिष्ट शक्ति, बहिरंग शक्ति अंतरंग शक्ति सबको संतुष्टि विधान के लिए भगवान ये बाल लीला को प्रकटित किए थे। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम का बाल लीला अध्याय श्लोक संख्या 9 का। दर्शनम तत्वीदम लोक आत्मना भृत्तवश्यतम रोजस्वाह वै वर्षम भगवन् बाल चेष्टितै दर्शनम तद्विदम लोके दर्शनम तम विदम लेके आत्मना भीतवश्यतम आत्मना भृत्तवश्यतम रजस्यो वा वै हर्षम वजस्यो वाह वै हर्षम भगवन् बालचेष्टितै दर्शनम तद्विदम लोके दर्शनम तद्विदम लोक आत्मना भृतवश्यतम रजस्यो वाह वै हर्षम भगवान् बालचेष्टितै दर्शनं तं विदं लोके दर्शनं तं विदं लोके आत्मना भृत्वश्यतम् रजस्यो वा वै हर्षम् रजस्यो वा वै हर्षम् भगवन् बालचेष्टितै। शब्दार दर्शनम दिखलाते हुए तद्विदम कृष्ण के कार्य को समझाने वाले पुरुषों को लोक सारे जगत में आत्मना आपने आप को भृत्तवशतम आपने दासों या भक्तों को आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहने वाले रजस्य ब्रजभूमि के उवाह संपन्न किया वही निस्संद हर्षम आनंद भगवान भगवान बालचेष्टित बच्चों को जैसे कार्यो द्वारा शिल्पोपाद की द्वारा अनुवाद तथा तत्पर शिल्पोपाद की जय। भगवान कृष्ण ने आपने कार्यकलापों के समझाने वाले संसार भर के शुद्ध भक्त को दिखाता दिया कि किस तरह वो आपने भक्त अर्थात द्वाशों द्वारा वश में किए जा सकता है। इस तरह आपने बाल लीला से उन्होंने ब्रजवासियों की हर्ष में वृद्धि की। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य ये एक अन्य दिव्य हास्य रस है कि कृष्णा आपने भक्त को आनंद वर्धन के लिए बाल लीलाएं करते थे। ओ इन लीलाओं को न केवल ब्रजभूमि के निवासियों का दिखलाते थे अर्पितु अन्य को भी ओ उनकी बहिरंगा शक्ति तथा ऐश्वर्य पर मुग्ध हो जाते थे। किंतु अंतरंगी भक्तों को जो केवल कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे तथा बाह्य भक्तों को जो उनकी असीम भक्ति पर मुग्ध रहते थे कृष्ण की अपने दासों के बस में रहने के इच्छा का पता चला। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति च पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीचितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं शोगणोरघुनतन्नितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं पुलिजनशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् शोभनोललिताशिबिशखानितंश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्यत्वदेशतारिणे नमः वदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिशे नमो नमः। वंशाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam kartivachalam pungum langayate girim jatkipatam aham bande paramananda madhavam. Hare Krishna. तो ये अध्याय का शीर्षक है कृष्ण का बाल लीला है. भगवान का और एक नाम है आनंद वर्धना. चलो गोपाल जी इसमें वर्णन किया कि भगवान का बहुत सारे नाम है तो उसमें से एक नाम है आनंद वर्धन. भगवान सिर्फ अपना भक्त को आनंद विधान के लिए इतने सारे लीला कर प्रदर्शित नहीं की थी. भक्त तथा अपना शिष्ट जीव को भी आनंद विधान के लिए भगवान ने इतनी सारी लीला को प्रदर्शित की थी, जिसके लिए भगवान का और एक नाम है आनंद वर्धन. तो आनंद विधान से अपना ब्रजवासी के लिए नहीं की थी भगवान, पूरा शिष्ट जीव को, जगतवासी को आनंद वर्धन करने के लिए भगवान ये लीला को प्रदर्शित की थी. क्योंकि भगवान को पता था कि सिर्फ ब्रजवासियों के लिए मैं तो किसी तरीके से मैं उनको आनंद विधान कर सकता हूं, लेकिन हमारा शिष्ट जीव जो कि दुखी है, दुख को निभाने का जो कारण भगवान ने अपने को प्रयास किया कि जगत जो है दुखालाम अशाश्वतम, ये जगत को दुख से निभाना भगवान का भी एक कर्तव्य होता है, जिसके लिए भगवान इस बाल लीला के द्वारा विशेष रूप से बाल लीला को प्रकटित की क्यों थी. नसुभ विषय बात वर्णन कर रहे हैं कि बाल लीला के द्वारा व्यक्ति को चित्त शुद्धिकरण होता है. भगवत अनुशीलन, जैसे कि भगवत अनुशीलन के द्वारा भक्त को चित्त शुद्धिकरण होती है, अपना हृदय परिवर्तन होता है. कोई भी अगर भगवत अनुशीलन करे तो भक्तवर ठाकुर बताते कि भक्तों का कर्तव्य होता है कि भगवत अनुशीलन ही करना. भगवत अनुशीलन किं कर्तव्य तारीय, कि भक्त का कर्तव्य होती है कि भगवत अनुशीलन करना. इसलिए भक्तों ने ठाकुर वर्णन कर रहे कि ये भगवत अनुशीलन किस तरीका से होना चाहिए. ये भगवत अनुशीलन को वैध भक्त जो होती है, भगवत अनुशीलन उनका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए. That is the only responsible duty for the devotee. श्री प्रभुपाद भी इसको स्वीकार भी किए कि वैध भक्त जो है, जो कि भगवान का हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उसको कहते हैं कि वैध भक्त. इस वैध भक्त का नित्य कर्तव्य होना चाहिए नित्य भगवत अनुशीलन, जिसके लिए कहते हैं कि नित्यम भागवत सेवया. इस वैधी भक्त का जो भगवत अनुशीलन, श्री भक्तों ने ठाकुर इसको पांच भाग में विभाजित किए कि किस तरीका से विशेष रूप से कलि युग में भगवत अनुशीलन को होना चाहिए. तो श्री भक्तों ने ठाकुर इसमें वर्णन किए है कि भगवत अनुशीलन पांच भाग में श्री भक्तिविनोद ठाकुर इसका वर्णन की, कहते कि इस पांच भाग पंच भागो तथा महाबाहो कृष्ण अनुशीलनम. चैतन्य भागवत ग्रंथ में पंच भागो तथा कृष्णानु अनुशीलनम, इस पंच भाग के द्वारा भगवत अनुशीलन होना चाहिए. इस पंच भाग का वर्णन किस तरीका से किए न, पंच भाग में श्री भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन कर रहे कि पंच भाग का जो पहली भाग है उसका नाम है शारीरिक अनुशीलन, इसको इंग्लिश में कहते कि बॉडीली एक्सरसाइज। इस बॉडीली एक्सरसाइज मतलब शारीरिक दोहिक अनुशीलन, इसके साथ इस शब्दों के साथ हर व्यक्ति आज का दिन में परिचित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि शारीरिक कसरत नहीं करते रहते हैं। जिन्होंने बहुत मोटापा हो गए, प्रभुपाद जी वर्णन भी कर रहे कि जिन्होंने बहुत मोटे व्यक्ति हो गए, तो उन्होंने अपना शरीर को कमाने के लिए जॉगिंग क्लब, ये क्लब वो क्लब घूमते रहते हैं। आज जिन्होंने दुबले पतला हो गए वो भी सोचते रहते हैं कि मेरे को अभी थोड़ा मोटा होना है, इसके लिए दूसरा क्लब में पहुंच जाते। तो भक्तिविनोद ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे हैं कि इसके द्वारा, इस शारीरिक कसरत के द्वारा भले भी आपको थोड़ा समय के लिए इंद्रिय भोग का आनंद मिलते रहते हैं, लेकिन शरीर को जो अपनी भूख, जो आपने भूखा लगते हैं, जिस तरीके से भूखा लगने से जिस प्रकार का भोजन होना चाहिए, अगर वो भोजन नहीं मिले तो आगे चलते शरीर को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। जिसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर इसमें वर्णन भी किए हैं कि पांच प्रकार का जो पंच भगवत अनुशीलन, पहले वर्णन किया है कि शरीरगत अनुशीलन शारीरिक अनुशीलन, दूसरा वर्णन किया है कि मनोगत मानसिक अनुशीलन, तीसरा वर्णन किए कि आत्मगत अनुशीलन। इस श्लोक का साथ, जिस श्लोक में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस श्लोक का साथ ये सब शब्द मतलब संबंध युक्त है, जिसके लिए मैं प्रयास करूंगा इसके ऊपर वर्णन करने के लिए, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर बड़ा कठिन कठिन शब्दों से इसको वर्णन भी किए है, जिसको वर्णन करना मेरे लायक भक्त के द्वारा संभव नहीं है। फिर भी साधु गुरु वैष्णव का कृपा से मैं प्रयास करूंगा इसको वर्णन करने के लिए। तो जो पंच भगवत अनुशीलन में चौथा जो भगवत अनुशीलन है उसको कहते कि प्रकृतिगत अनुशीलन, और पांचवा अनुशीलन वर्णन किया है कि समाजगत अनुशीलन, जो सोशल एक्टिविटी जिसको बोलता है इंग्लिश में। पिछले हफ्ता में कुमुदास प्रभु बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन भी कर रहे थे इसके ऊपर, दूसरा उन्होंने एक पॉइंट लिए थे, जैसे कि दो दिन पहले कमलेशन प्रभु हास्य रस के ऊपर वर्णन किए रूप गोस्वामी पाद का किताब से। तो मैं आज प्रयास करूंगा कि शारीरिक अनुशीलन किस तरीके से होना चाहिए, भक्तिविनोद ठाकुर इसको वर्णन भी किए। इस शारीरिक अनुशीलन को भक्तिविनोद ठाकुर फिर सात भाग में इसको विभाजित किए। पहले तो पंच भाग का भगवत अनुशीलन, और पंच भाग में पहला जो भगवत अनुशीलन है उसको कहते कि शारीरिक गत भगवत अनुशीलन, जिसको कहते कि दोहिक भगवत अनुशीलन, चर्चा जिसको बोलते हैं। अनुशीलन का हिंदी शब्द है चर्चा, प्रैक्टिस, बॉडीली एक्सरसाइज। दिस बॉडीली एक्सरसाइज किस तरीके होना चाहिए, आज का दिन में जैसे कहते हैं ना कहीं म्यूजिक थेरापी भी एक तरीका का थेरापी हो गए, जैसा कि कोई भी बड़ा हॉस्पिटल में आप जाइए तो बहुत मोटे व्यक्ति आ गए, उनको डॉक्टर के पास गए, उनको थोड़ी शरीर को पतला करना है, ओजन घटा करना है, तो उनको एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम है जय श्री राधा कृष्ण भगवान की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जिनको ओजन बहुत बढ़ गए, आज के दिन में तो बहुत होता है, सबसे बड़ा टेंशन का काम यही रहता है कि जिसका ओजन बहुत हो गए ओजन को घटा करना, और जिसका ओजन कम है ओजन को आगे बढ़ाना। तो इसके लिए कोई व्यक्ति जब डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जिसका ओजन बहुत हो गए, उनका मन में टेंशन आ गया कि ओजन मेरा बहुत है तो डॉक्टर के पास जाकर रोते रोते बताते कि डॉक्टर साहब मेरा वजन बहुत है, इसको घाटा करना है। तो डॉक्टर ने बहुत सारे प्रेस्क्रिप्शन, बहुत सारे दवाई वगैरह बताते हैं, और साथ साथ में एक सिस्टम बताते हैं कि आपको म्यूजिक थेरेपी करना है। तो देखिए, बहुत सारे मोटे व्यक्ति जब सुबह ये मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं ना, तो कान में सब ईयरफोन लगा के रखते हैं, और मॉर्निंग वॉक के साथ साथ वो उसको कहते हैं कि म्यूजिक थेरेपी। लेकिन ये म्यूजिक थेरेपी शब्द आज का दिन का नहीं है, ये आज से 530 साल पहले भी ये म्यूजिक थेरेपी था, जो कि भक्तिविनोद ठाकुर इसको वर्णन कर रहे हैं कि शारीरिक अनुशीलन में पहला जो अनुशीलन का वर्णन किए हैं उसका नाम है कि सोवनगत अनुशीलन, टू एक्सरसाइज अबाउट सोवन हियरिंग। दूसरा जो अनुशीलन का वर्णन किए हैं वो है कीर्तनगत अनुशीलन। तो आज बहुत मॉडर्न शब्द आ जाते हैं ना कि ये म्यूजिक थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, लेकिन अगर ध्यान से अगर कोई व्यक्ति इसको चर्चा करे, पहले भी कोई नया शब्द डाल दिया आज का दिन में, लेकिन ये शब्द आज का नहीं है, जो कि हमारा पुराना जमाने का है। ये जैसा कि ये जो म्यूजिक थेरेपी कहते कि म्यूजिक थेरेपी करने से शरीर घटा होता है, लेकिन ये म्यूजिक थेरेपी आज का नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु का समय से है, आज स्वयं भक्तिविनोद ठाकुर इस म्यूजिक थेरेपी को वर्णन भी गए, जिसको कहते कि कीर्तन गत अनुशीलनम। लघु भागवतम मृतम में भक्तिविनोद ठाकुर एक जगह में टिप्पणी में बताए कि कीर्तन गत अनुशीलनम शरीर शोधनम, कीर्तन के द्वारा शरीर को, अपना शरीर को आप शोधन कर सकते हो, इसको कहते हैं कि शारीरिक अनुशीलन, टू द फिजिकल एक्सरसाइज। और तीसरा जो अनुशीलन का वर्णन किए हैं इसको कहते हैं कि आग्रहण, मतलब आग्रहण के साथ हम लोग परिचित है, सुबह मंगलाती के समय भगवान नरसिंहदेव का सेंट हम लोग लेते हैं, भगवान का चरण पुष्प का घान हम लोग लेते हैं, इसको कहते हैं कि आग्रहण गत अनुशीलन। मैं इसके विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा बाद में। चौथा नंबर में वर्णन किए कि दर्शनगत अनुशीलन, टू टेक दर्शन एक्सरसाइज, मतलब जैसे कि भगवान को दर्शनार्थी होता है सुबह सात पुण्य में, जब गोविंद महादेव पुरुषम चलते हैं तो हम लोग कितने अच्छा ध्यान से प्रेम से भगवान श्री राधा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौनिता प्रभुपाद जी को हम लोग दर्शन करते हैं। ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है, इसको कहते हैं कि दर्शनगत अनुशीलन। और ये जो दर्शनगत अनुशीलनम, घान अनुशीलनम, शारीरिक अनुशीलनम, कीर्तन अनुशीलनम, ये सब भक्तों के लिए नहीं है। हमारे आचार्य लिखते हैं कि ये सब भक्तों के लिए नहीं है, भक्त तथा जो अभक्त भी है वो भी अगर इसी तरीका से इसको चर्चा करे तो शारीरिक हिसाब से भी वो सुस्त रह सकता है, टू बिकम ए हेल्दी। पांचवा जो वर्णन की है उसको कहते कि स्पर्शगत अनुशीलनम। भक्तिविनोद ठाकुर स्पर्शगत अनुशीलन, आ छठवां में वर्णन किया कि सातगत अनुशीलनम, आ सातवां में वर्णन किया कि अंगगत अनुशीलनम। तो पहले उन्होंने वर्णन किया कि भगवत अनुशीलन को पांच भाग में उन्होंने विभाजित किया। ये पांच भाग का पहली जो भाग है इसको कहते हैं कि शारीरिक अनुशीलन, टू फिजिकल एक्सरसाइज। और यही फिजिकल एक्सरसाइज को भक्तिविनोद ठाकुर सात भाग में विभाजित किए। पहला जो नाम दिया उसका नाम है शोवनगत अनुशीलनम, टू एक्सरसाइज अबाउट हियरिंग। ये जो भी व्यक्ति सुबह शाम भगवत गीता तथा भागवतम क्लास में बैठते रहते हैं, श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर इसी भागवतम तथा भागवत गीता क्लास में अगर एक शब्द भी उनका कान से अंदर हृदय में पहुंच गए
तो उसका चित्त का शुद्धिकरण होता है, टू बिकम ए प्यूरिफाइड।
एक शब्द भी अगर किसी को पहुंच गए, आज का दिन में व्यक्ति का सबसे ज्यादा बीमारी होता है कि किसी का निद नहीं आता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि डॉक्टर को जाके बताते कि डॉक्टर साहब मेरे को रात को नींद नहीं होता है, मेरे को दिन में मैं सो नहीं पाता हूं, रात को मेरा नींद नहीं होता, पूरा रात भर मैं जगा रहता हूं, 10 बार मेरे को बाथरूम जाना पड़ता है तो मेरे रात को नींद नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना प्यास लगता है, 10 बार पानी पियो फिर 10 बार बाथरूम जाओ, रात भर मेरा नींद नहीं है, इसी चक्कर में मैं फंस गया हूं। तो डॉक्टर ने एक से एक दवाई देते हैं, वो दवाई खाने के बाद भी अगर नींद होने का ज्यादा गोली अगर कोई व्यक्ति खा लिए तो हरी बोल हो जाते हैं, अगर एक दो गोली खाए तो फिर भी उसको नींद नहीं होते हैं। अगर वही व्यक्ति जब कोई जगह में आकर शास्त्र पाठ का ऊपर श्रवण करते रहते हैं ना, कोई भी जगह में अगर इसी तरीके से आगे भागवत कथा को श्रवण करे, कोई भी शास्त्र को श्रवण करे, तो उसको तुरंत हमारे भक्त का अंदर भी है, मेरा स्वयं भी होता है, जब ओम नमो भगवते वासुदेव हो जाते हैं, जय राधा माधव खत्म हो जाते हैं, तो तिरंग मुंडी हिल जाते हैं। तो श्री भक्ति ठाकुर इसको कहते हैं कि श्रवण गतो अनुशीलनम, मतलब ये भी, ये जो श्रवण करना ये भी एक प्रकार का बॉडीली एक्सरसाइज। आज का दिन में व्यक्ति सबसे ज्यादा कंसस रहते हैं अपना शरीर का ऊपर, शरीर को ठीक रखना है, ये शरीर को ठीक रखने के लिए कितना कसरत, कितना खर्चा, इधर जाओ उधर जाओ, सवेरे जॉगिंग क्लब फिर वेटलेस क्लब, एक से एक क्लब बने हुए हैं। लेकिन हमारा आचार्य क्या कहते हैं, उसी आचार्य के हिसाब से अगर हम लोग चले तो प्रभुपाद जी कहते कि नो नीड टू गो एनी डॉक्टर्स, कोई डॉक्टर के पास जाने का कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ यू हैव टू फॉलो आवर आचार्य डायरेक्शन। अगर आचार्य का जो डायरेक्शन, जो नीति, उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो नो नीड टू गो एनी डॉक्टर्स, फिर भी हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी कभी वो बीमारी, क्या करें, जीवन का चक्कर में फंस गए हर व्यक्ति। तो इसके लिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं कि श्रवणगत अनुशीलनम, ये श्रवण करने से आपका बॉडीली एक्सरसाइज होता है। अगर किसी का मन में प्रश्न आ सकता है कि श्रवण करने में किस तरीके से बॉडीली एक्सरसाइज होता है, तो भक्तिमान ठाकुर इसमें वर्णन किया बहुत सुंदर से, ये श्रवण भी एक प्रकार का बॉडीली एक्सरसाइज। किस तरीके से बॉडीली एक्सरसाइज, आपको जैसे कि कोई व्यक्ति सुबह उठकर मतलब जॉगिंग वगैरह करते रहते हैं, मॉर्निंग वॉक जिसको बोलते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक तो एक तरीके से शारीरिक कसरत है, उसमें तो अच्छा ही होता है, लेकिन उससे भी अच्छा होता है ये श्रवणगत अनुशीलन के द्वारा। प्रभुपाद जी भी इसमें बने, प्रभुपाद जी इस शब्द के ऊपर तात्पर्य भी बताया भागवत में, प्रभुपाद जी क्या वर्णन की है, श्रवण गतों अनुशीलन के द्वारा किस तरीके से आपका बॉडीली रिजल्ट मिलते हैं आपको, कि आपने बहुत ही सुंदर इसके वर्णन किए हैं कि आपने बैठ गए भागवतम क्लास सुनने में, भले भी आपका अगर नींद आ रहा है, आपका मुंडी हिल रहा है नीचे, आंख बंद हो रहा है, क्योंकि अच्छा बात अच्छा कथा जो आपको हृदय चित्त शुद्धि करना है, जो आपने जीवन को आपने चरित्र को आगे बढ़ा सकते हो, शुद्धिकरण कर सकते हो, वो अच्छा शब्द आपका हृदय में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी जिसके लिए कहते कि अनुशीलनम, मतलब प्रैक्टिस एक्सरसाइज, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य में अगर बड़े बने तो उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए कोई भी कार्य क्षेत्र में। जैसे कि कोई बड़ा क्रिकेट प्लेयर बन गए तो एक दिन में वो क्रिकेट प्लेयर नहीं बन सकता, एक दिन में वो उसका सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन सकता है वो, लेकिन उन्होंने बहुत उन्होंने चर्चा की, बहुत प्रैक्टिस की, जिसके कारण बने। इसी तरीके से कि श्रवणगत अनुशीलन के द्वारा किसके द्वारा आपको
शरीर में मानसिक परिवर्तन है, तू बिकम ए मेंटली एक्सचेंज। कैसे होता है? तो भक्ति विनोद ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे हैं कि आपने भागवतम क्लास में बैठे, बड़ा सुंदर तरीका से स्पीकर बहुत ही अच्छे तरीका से इसको वर्णन कर रहा है, लेकिन आपको पूरा नींद आ रहा है, आप दोनों आंख बंद हो रहा है, मुंडी नीचे हिल रहा है, फिर भी आपने प्रयास कर रहे हो, कभी खड़ा होकर कभी बैठकर। इसको कहते कि अनुशीलनम, सोवनम अनुशीलनम। आपको नींद आ रहा है, पूरा मुंडी हिल गए नीचे, आंखों बंद हो रहा है, फिर आप प्रयास कर रहे हो कि कभी खड़ा हो गए, आपने खड़ा होकर सुन रहे हो, अगर कभी फिर बैठ गए, कभी आंख में जाकर पानी डाल के आए, फिर भी आपको सुनना है। क्यों? अगर इस एक भी शब्द भागवतम का एक भी शब्द अगर आपका कान से आपका हृदय में प्रवेश करे तो आपका हृदय चित्त शुद्धिकरण हो जाता है एंड यू बिकम ए प्यूरिफाइड। आप अपने को आप सुधार सकते हो। और जब आपका मन शुद्ध हो जाते हैं ना, तो मन और देह दोनों और को रिलेटेड, वो भक्त विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। जब एक शब्द अपना हृदय में प्रवेश की तो उसी शब्द के द्वारा जब आपका हृदय चित्त शुद्धिकरण हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका देह भी शुद्ध हो जाता है। और जब देह आपका शुद्ध हो जाता है तो आपका देह को कहते कि पौष्टिक देह। पौष्टिक अर्थ होता है टू हेल्दी बॉडी, जिसको बोलते हैं हेल्दी बॉडी। मतलब ये नहीं कि बहुत मोटे पे है एकदम, जैसा कि आपका गाल आपेल का मापिक हो गए, इसको हेल्दी बॉडी नहीं कहते, इसको वर्णन भी किया बहुत अच्छे तरीका से। तो इसको कहते कि सोवन गत अनुशीलनम, मतलब अनुशीलन चर्चा। इसी चर्चा के द्वारा अगर एक शब्द भी आपका हृदय में प्रवेश किए तो आपका जब हृदय परिवर्तन होता है ऑटोमेटिकली हृदय के साथ साथ आपका देह भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नो नीड टू गो एनी मल्टी जिम क्लब फॉर योर बॉडीली एक्सरसाइज। नो नीड टू गो मतलब कोई भी जरूरत नहीं है आपको कोई मल्टी जिम में जाने के लिए। भगवान ने आपको दो दो कान दे दिए, दूसरी कान के द्वारा अगर भगवत अनुशीलन भगवत कथा को श्रवण करे तो आपको बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरे शब्द में भक्ति विनोद ठाकुर बताए कि कीर्तन गत अनुशीलन। एक कीर्तन गत अनुशीलन के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर और हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भक्ति संघ का संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने बड़ा ध्यान दिया ये किस प्रकार का कीर्तन को श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार का कीर्तन सुनने से आपका हृदय परिवर्तन होता है, इसमें वर्णन करें कि कीर्तन को भक्ति विनोद ठाकुर ने पांच भाग में विभाजित किया। पंचविध कीर्तनादि श्रवण तरंग, पांच प्रकार का कीर्तन होता है। किस प्रकार का? पांच प्रकार का कीर्तन का वर्णन किए है। एक है शास्त्र कीर्तन, दूसरा है नाम लीला आदि कीर्तन, इसका मैं व्याख्या कर रहा हूं बाद में। शास्त्र कीर्तन, दूसरा है नाम लीला आदि कीर्तन, तीसरा वर्णन किए है कि स्तव पाठ रूप कीर्तन, चौथा का वर्णन किया कि विज्ञप्ति कीर्तन, आठ पांचवा का वर्णन किया कि जपो कीर्तन। इस पांच प्रकार कीर्तन में सबसे जो गुरुत्वपूर्ण कीर्तन होता है उसका नाम है विज्ञप्ति कीर्तन। भक्ति विनोद ठाकुर इसका एकदम विस्तृत रूप से वर्णन किया है। प्रभुपाद जी भी इसको स्वीकार किए। प्रभुपाद जी भागवत में बहुत सारे जगह में भक्ति विनोद ठाकुर का इसी अध्याय के ऊपर से कोटेशन भी किए। आगे चलते हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आज का ये नौवां श्लोक है, आगे चलते 20, 21, 22, 23 ये चारवें श्लोक में प्रभुपाद जी वर्णन किए कि किस तरीके से कीर्तन को हम लोग को श्रवण करना चाहिए, कौन तरीके से कीर्तन को श्रवण करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसमें वर्णन करके विज्ञप्ति कीर्तन, विज्ञप्ति कीर्तन किसको कहते हैं? जैसे कि एक कीर्तन का नाम मैं बोल देता हूँ जिसको कहते कि अरुणोदय कीर्तन। अरुणोदय कीर्तन का अर्थ होता है जीव जागो गोरा चादो बोले, और उदिलो अरुण पूरब भागे, इसको कहते कि अरुणोदय कीर्तन। इस विज्ञप्ति कीर्तन को भक्त विनोद ठाकुर फिर तीन भाग में विभाजित की, एक अरुणोदय कीर्तन, एक लालसामयी कीर्तन और एक दैन बोधिका कीर्तन। टू बिकम यूटरजस मतलब दैन भाव, टू बिकम ए हम्बलनेस। जिस कीर्तन के द्वारा आप भगवान के पास प्रार्थना कर सकते हो उसको कहते कि प्रार्थना कीर्तन। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे कि शरणागति कीर्तन, उसके बाद प्रार्थना कर गौरांग तुम्हें मोड़े दया ना छाड़ियो आपनो कोड़िया रांगा चरों ने राखियो, इसको कहते कि प्रार्थना कीर्तन। मैं अरुणोदय कीर्तन वर्णन किया कि उदिल अरुण पूरब भागे, जीव जागो गोड़ा चादो बोले, और प्रार्थना कीर्तन गौरांग तुम्हें मोड़े दया ना छाड़ियो आपनो कोड़िया रांगा चरों ने राखियो, इसको कहते कि प्रार्थना कीर्तन। मतलब जिस कीर्तन के द्वारा आपने भगवान को प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना बोधि का तब कीर्तन आदि लोगो भागवतम मृतम में इसमें वर्णन किए कि क्यों इसको प्रार्थना कीर्तन कहते हैं। गौरांग तुम्हें मोड़े दया ना छाड़ियो आपनो कोड़िया रांगा चरों ने राखियो, उसमें वर्णन किए है कि एकुले ओकुले मोई दिलु तिलांजलि राखियो चरणे मोरे अपनार कोड़ी। इस तिलांजलि का अर्थ होता है, एक संस्कृत शब्द है तिलांजलि। तिलांजलि के विशेष रूप से लोचनदास ठाकुर वर्णन किए चैतन्य मंगल ग्रंथ में कि तिलांजलि का अर्थ होता है तिल और पानी के द्वारा अंजलि प्रदान करना। जिसका घर में किसी का मृत्यु होता है उसमें उसको आत्मा का कल्याण के लिए तिल और जल के द्वारा जब अर्पण होता है उसी आत्मा को संतुष्टि विधान के लिए उसको कहते कि तिलांजलि। तिल के द्वारा अंजलि जिसका नाम है तिलांजलि। एकुले ओकुले मोई दिलु तिलांजलि राखिया चरणे मोरे आपनार बोली। तो वासुकोष ठाकुर वर्णन करे कि तिलांजलि ये इसको कहते कि प्रार्थना कीर्तन में आए ये। तो ये तिलांजलि शब्द का अर्थ होता है तिल और जल अर्थात पानी के द्वारा कोई मृत व्यक्ति आत्मा का संतुष्टि विधान के लिए कहते कि तिलांजलि। लेकिन किसी का मन में प्रश्न आ सकते हैं कि वो तो आत्मा के ऊपर गए, वो तो कोई व्यक्ति मर गए उसके आत्मा का कल्याण के लिए संतुष्टि विधान के तिलांजलि जिसको कहते कि तर्पण। लेकिन तिलांजलि शब्द इसके लिए इधर व्यवहार किया कि एकुले ओकुले मोई तिलांजलि, एकुले ओकुले मोई दिलु तिलांजलि। मतलब एकुल और ओकुल मतलब पहला कुल जो वर्णन किए उसको कहते कि बद्ध जीव का कुल। तो एक कुल में मेरा हो गया, मेरी जिंदगी खत्म। और दूसरा कुल जब भक्ति मार्ग में आए तब भी मैंने कुछ कर नहीं पाता हूं। जब मैंने जागतिक जीवन में था, हमारा गौड़ी आचार्य इसको बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, जब मैंने जागतिक जीवन में था तब मेरे जीवन के मैंने कुछ कर नहीं पाए, तो मेरा जागतिक जीवन बिकम ए फेलियर व्यर्थ हो गए। और जब मैंने आध्यात्मिक जीवन में आए, आध्यात्मिक जीवन का जो पहली लक्ष्य होना चाहिए मौन और कृष्ण चरणारविंद, वो भी मैंने मन को अपना मन को भगवान का चरण में मैंने समर्पित नहीं कर पाए। तो इस तरीके से ये जीवन में मेरा बिथा हो गए मतलब तर्पण हो गए, जिसके लिए इसके वर्णन कर रहे कि एकुले ओकुले मोई दिलु तिलांजलि। फिर भी मैं आपको पास प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भगवान राखिया चरणे मोरे अपनार बोली, आप मेरे को अपना आदमी सोचकर आपका चरण में आप मेरे को राख दो। गौरांग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ियो, હે ગોરંગ મહાપ્રભુ, આ મહાભદન અવતાર, આ કૃપર અવતાર, આપ મેરે કો કૃપા કરકે આપકા ચરણ મે મેરે કો રાખો. ગૌરંગ તુમે મોરે દયા ના છાડ્યો, ઇસકો કહેતે કે દૈનો બોધ પ્રાર્થના. તો કોઈ પૂછ સકતા કે દૈનો બોધ પ્રાર્થના સાથ શારીરિક સંબંધ ક્યા હૈ? इसके साथ शारीरिक संबंध क्या है? अगर बाह्य दृष्टि में अगर कोई व्यक्ति देखे तो इसके साथ सही रूप से कोई शारीरिक संबंध नहीं है. लेकिन अगर बड़ा ध्यान से इस शब्द को अगर कोई व्यक्ति सोचे, गौरांग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ियो, आपोनो कोरिया रांगा चरणे रखियो. भगवान के पास अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैंने तो कुछ नहीं कर पाए, जब मैंने जागतिक जीवन में था तब भी मेरा जीवन बिथा हो गया, मैंने कुछ नहीं कर पाया, मेरा जीवन में कोई सफलता नहीं आए, जब जागतिक जीवन छोड़ के मैंने आध्यात्मिक जीवन में भी आए तब भी अपना मन को मैंने अपना चरण में आपने को समर्पित नहीं कर पाए, इसके लिए मेरे दो कुल खत्म हो गए, फिर भी आपने करुणा का सागर, आप दया सागर, आप महावदन्य अवतार, आपका चरण में आप मेरे को रखो. दिस इज कॉल्ड प्रार्थना. इसको बोलते कि प्रार्थना दोनों आत्मनिर्भर. इस तरीका से अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास प्रार्थना करे तो भगवान निश्चित रूप से आपका प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं. अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन. जैसे देखिए कि बहुत सारे मुनि ऋषियों ने भगवान के पास प्रार्थना की थी, तपस्या की थी. उत्तरी मुनि ने कितने तपस्या की कि एक पुत्र संतान होने के लिए, एक पुत्र संतान के लिए उत्तरी ऋषि ने कितना तप किए. अंतिम में भगवान दत्तात्रेय रूप लेकर आकर उत्तरी ऋषि को पूरा किए कि मैंने आपने को आपको पास मैं समर्पित कर रहा हूं. तो देखिए भगवान कितने कृपालु. तो इसी तरीका से भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि ओर पिलो तुहा पदे नंद किशोर. अगर भगवान का चरण में अगर किसी तरीका से कोई व्यक्ति समर्पित करे तो निश्चित रूप से भगवान उसको कृपा करेंगे. इसके बाद वर्णन किया कि लालसामयी कीर्तन किसको बोलते हैं. लालसामयी कीर्तन का अर्थ होता है लाल से मतलब लालची, लोभ. ऐसा कीर्तन होना चाहिए कि भगवान का ऊपर मेरा एकदम आकर्षित हो जाए. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस लालसामयी कीर्तन का माध्यम से भगवान का ऊपर आपका आसक्ति होता है. इस जागतिक जीवन भी कोई भी जीवन में आसक्ति से भगवान का ऊपर होना चाहिए. भगवान छोड़कर अगर किसी के ऊपर मेरा आसक्ति हो जाए तो अंतिम फल उसका दुख ही दुख का कारण होती है. कोई भी भगवान को छोड़कर अगर किसी के ऊपर भी आसक्ति हो जाए उसी आसक्ति जीवन का दुख का कारण. तो भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं इसमें कि लालसामयी कीर्तन. लालसामयी कीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत ही सुंदर भजन लिखे कवे गौर बने, एक बहुत ही सुंदर एक भजन है. मैंने भूल गया पूरा भजन लेकिन फर्स्ट लाइन है कवे गौर बने. तो इस तरीका से अगर कीर्तन को कोई ध्यान दे तो इसमें आपका मानसिक आध्यात्मिक दैहिक हर तरीके से आप इसका फायदा ले सकते हो. और ये भी सब भगवत अनुशीलन का एक एक पाठ होता है. तो शारीरिक अनुशीलन में दूसरा को हम लोग वर्णन किए. तीसरा वर्णन है आग्रहणगत अनुशीलन. आग्रहण करते थे घ्राण लेना, मतलब सेंट लेना. जैसे कि सवेरे मंगल आरती होता है, नरसिंहदेव का आरती जब हो जाता है तब कृष्ण शिष्य वो स्पेशली सबको सेंट देते हैं. तो इसी सेंट के द्वारा कोई व्यक्ति का सोच सकते हैं अरे सेंट लेने से क्या फायदा क्या है, भगवान का चरण पुष्प लेने में फायदा क्या है. इसमें भी आपका बॉडीली एक्सरसाइज होता है. किस तरीके से होता है? एक तो भक्तुल ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे कि एक है कि अगर अपने पुष्पों का घान अपने लिए घान को आस्वादन किए, जैसे कि सवेरे नरसिंहदेव का सेंट लगाते हैं तो तुरंत हम लोग उसको घान लेते हैं, भगवान का पुष्प कोई दे के जाते हैं तो तुरंत उसको घान लेते हैं, तो इसके द्वारा आपको दोहिक अनुशीलन होता है, घान अनुशीलन बोलता है इसको। तो किस तरीके से घान अनुशीलन होता है, भक्ति विनोद ठाकुर इसमें वर्णन किए कि आपको घ्राणेन्द्रियों द्वारा इसको अगर कोई व्यक्ति अनुशीलन करे तो आपका विषय का ऊपर कोई आसक्ति नहीं रहता है, विषय भोग वासना इंद्रियर तड़े करे रचना, लोचनदास ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान के पुष्प को आस्वादन करे, घान सेंट ले और नरसिंहदेव को सेंट लगाते रहे, तो इसमें विषय भोग से वो दूर में रह सकता है, ये भी एक प्रकार का अनुशीलन है। इसके द्वारा जब विषय भक्ति में विषय के ऊपर कोई व्यक्ति का आसक्ति नहीं है तब भगवत अनुशीलन में वो आगे बढ़ सकते हैं, अगर भगवत भक्ति में कोई आगे बढ़े तो निश्चित रूप से उसका आध्यात्मिक जीवन में कल्याण होता है। चौथा वर्णन की है, क्योंकि टाइम भी हो गया, मैं दर्शन तक मैं खत्म कर देता हूं। दर्शनगत अनुशीलन, दर्शनगत अनुशीलन भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने आपको दो दो आंख दे दिए, आपका मन में उत्कंठा रहते हैं कब मैंने जाकर मैंने भगवान का दर्शन करूं। कहते हैं कि इसमें कि उत्कंठा कारण आयो दर्शनेन्द्रिय तब चंचला, इसका अर्थ होता है कि आपका मन में उत्कंठा रहता है कि मैंने कब जाकर राधा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गोनिता तोपा जी को मैंने दर्शन करो, इसको कहते कि उत्कंठा बिकम एंग्जाइटी। तो आपका मन में ये उत्कंठा है, उत्साही हो आप जी मेरे को जाकर भगवान का दर्शन करना है। तो किस तरीके से दर्शन होता है, भक्तिवल ठाकुर वर्णन कर रहे इसमें कि आपने दो आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन कर रहे, भगवान ने दो सुंदर सुंदर आंखों आपको दे दी, इस दो आंखों के द्वारा जो भगवान का दर्शन करते हो उसी दर्शन का माध्यम से भगवत कृपा आपका आंखों में प्रदर्शित होता है। तब जब आपने भगवान का दर्शन करते हो, इसमें भक्ति ठाकुर बहुत ही सुंदर वर्णन भी किए कि आपका जो आंखों में जो दो आईबॉल है, आईबॉल ब्लैक कलर का आईबॉल होता है, तो इस ब्लैक कलर का आईबॉल ओपन नीच होता है, अप डाउन होते रहता है, इस अप डाउन के द्वारा आपका चेतना का शुद्धिकरण होता है। इसमें अगर आपका मन में कोई इंद्रिय भोग वासना का प्रबल वासना है, आपका आपको भोग करना किसी भी तरीका से, उसी प्रकार व्यक्ति अपना आंखों के द्वारा जब भगवान जी को दर्शन करते हैं, ठाकुर जी को जब दर्शन करते हैं, उसी आई बल मतलब ये आंखों के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है उसको बोलते हैं आई बल, इस आई बल जब अप डाउन होता है, ऊंचा नीचा होता है, ऊपर नीच होता है, तो उसके द्वारा आपका मन में जितनी भोग वासना है उसी भोग वासना से आप दूर में रह सकते हैं। इसके कहते कि दर्शनगत अनुशीलन, शारीरिक अनुशीलन के द्वारा भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे कि इस शारीरिक अनुशीलन में आपका चेतना शुद्धिकरण, आपका आध्यात्मिक शुद्धिकरण एवं आपका आध्यात्मिक प्रगति होता है। भले भी वो अगर भक्ति मार्ग में भी नहीं है, सिर्फ सिंपली आए भगवान का दर्शन करने के लिए, उसका भी इसको फायदा मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसमें बहुत ही विस्तृत रूप से चैतन्य शिक्षा में ग्रंथ है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे है खुद, तो बहुत ही विस्तृत रूप से इसका वर्णन किए है कि किस तरीके से अनुशीलन के द्वारा अपना आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय, गंतराक्ष श्रीमद भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे।